तो हेलो दोस्तों, यूपी मोबाइल वाणी में आप सभी का मैं शिवम श्रीवास्तव जौनपुर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो इससे पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कौन होता है गीता में। तो श्री कृष्ण भगवान ये बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करता है और काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाता है, लगभग जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है वो व्यक्ति होता है स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति। तो उसके बाद फिर क्या कहा गया है, फिर कहते हैं कि हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बहुत ज़्यादा डीप बात कर रहे हैं यहाँ पे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अगर तुम मेरे सानिध्य में नहीं आते हो, यानी कि भगवान के बारे में उनका चिंतन नहीं करते हो, आप किसी भी भगवान को मानते हो, किसी भी धर्म से हो, अगर आप भगवान का चिंतन नहीं करते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखते हैं, अगर आप उनके परायण यानी कि उनके प्रति समर्पित नहीं रहते हैं, तो मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है। तब क्या होता है, विषय विषय मतलब होता है कि आप जो भी, जैसे कि जो भी भाव होते हैं हमारे अंदर, जो भी चीज़ें यहाँ पे इस पृथ्वी पे उपस्थित हैं, या जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं, जो संसारिक चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे, है ना। अगर आप भगवान में नहीं डूबे हुए हैं, ये आपको नहीं पता है कि आप अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते, भगवान का चिंतन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप विषयों के बारे में ज़रूर सोचेंगे। ठीक है, विषयों को चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों से आसक्ति हो जाती है। अब अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, या किसी भाव के बारे में, या किसी व्यक्ति के बारे में सोचेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका उससे अटैचमेंट हो जाएगा। आसक्ति मतलब अटैचमेंट। ठीक है, तो आप भाई अगर आप सोचेंगे तो आप उससे अटैच होंगे, और अगर आपको लगाव हुआ उस चीज़ से, यानी कि आपको चाहिए वो चीज़, या फिर आप उस चीज़ को पकड़ के रखना चाहते हैं, तो आगे क्या होगा, आगे होगा कि और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ उससे अटैचमेंट नहीं है आपको, आप उसको अब पाना चाहते हो। ठीक है, अगर आप उसको पाना चाहते हो फिर आगे क्या होगा, फिर आगे ये होगा कि और कामनाओं में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। तो हर चीज़ जो आप चाहो वो मिल जाए ऐसा भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें विघ्न पड़ेगा, यानी कि कोई ना कोई आपको उसमें रोकेगा, कोई ना कोई बाधाएं आएंगी। और हमें क्रोध कब आता है, हमें गुस्सा कब आता है, हमें गुस्सा तभी तो आता है जब हम जो चाहते हैं चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं तब। और अगर आपको इस बात से गुस्सा नहीं आ रहा है, आपको निजी स्वार्थ से गुस्सा नहीं आ रहा है, समझ लीजिए आप किसी महान कारण के लिए क्रोध कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को इस बात पे गुस्सा आया कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमें किस बात पे गुस्सा आता है, हमें इस बात पे गुस्सा आता है कि हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो अगर आपको क्रोध आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपकी कामना में विघ्न पड़ रहा है। तो अब देखिए, पहले क्या हुआ, आप अटैच हुए, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, आप पाना चाहे उस चीज़ को, फिर आपको मिली नहीं तो आप क्रोध में आ गए। अब आप जब क्रोध में आते हैं तो क्या होता है, क्रोध में अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, यानी कि आप बेवकूफ़ हो जाते हैं क्रोध में। जब आप जब ध्यान देंगे आप क्रोध में ही गलत फैसले लेते हैं, क्रोध में ही आप ऐसे कार्य करते हैं जो कि गलत होता है। तो अब अविवेक उत्पन्न हो गया आपके अंदर। अब आपकी अगर अविवेक उत्पन्न होगा क्या होगा, तब होगा कि स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाएगी, तब आप कुछ याद नहीं रख पाएंगे कि आपको कैसे आचरण करना चाहिए, आप कैसे व्यक्ति हैं, दरअसल आप अंदर से कितने साफ हैं, आप ये सारी चीज़ें भूल जाएंगे, आप अपने अंदर के ईश्वर को देख नहीं पाएंगे। तो उसके बाद फिर क्या होगा, इस स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, यानी कि आप कुछ सोच नहीं पाएंगे, आपकी ज्ञान शक्ति खत्म हो जाएगी। अब आप ज्ञान के विषय में नहीं सोचेंगे, अब आप मूढ़ता के विषय में सोचेंगे, गलत कार्य करने के विषय में सोचेंगे, आपकी बुद्धि का भी नाश हो जाएगा। देखिए कितनी चीज़ें चल रही हैं उसी से, सिर्फ आपके एक विषय से अटैच होने से। अगर आप प्रभु का ध्यान करेंगे तो ये नहीं होगा, तो उसके बाद आपकी बुद्धि का नाश होगा, फिर क्या होगा, फिर यह पुरुष अपने श्रेयस धन से गिर जाएगा, यानी कि फिर आप वो करेंगे जो नहीं करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित रहता है, यानी कि जो व्यक्ति प्रभु के सानिध्य में रहता है, इंद्रियों को वश में रखता है और भोग विलास से दूर रहता है, उसको पता है कि ये सारी माया है, अंतःकरणी प्रसन्नता तब उसके अंतःकरण में प्रसन्नता रहती है, भले ही उसके सामने जो चीज़ें हो रही हों या वो फंसा हुआ हो, लेकिन वो अंतःकरण में प्रसन्न रहेगा।